मत्ती अध्याय 22। लोगों को उदाहरण या दृष्टांत देते हुए यीशु ने फिर से कहा,
स्वर्ग का राज्य एक ऐसे राजा की तरह है जिसने अपने बेटे की शादी का इंतजाम किया। उसने अपने नौकरों को उन लोगों के पास भेजा जिन्हें नेवता दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। उसने एक बार फिर अपने नौकरों को ये कहला भेजा, नेवते में बुलाए लोगों से कहना कि मैंने खाना तैयार किया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दावत में आ जाओ। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इधर उधर चल दिए, एक अपने खेत में, दूसरा अपने काम पर। बाकी लोगों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें मार भी डाला। जब राजा को ये बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी फौज को भेजकर हत्यारों को नाश किया और शहर को जला डाला। तब उसने अपने नौकरों से कहा, खाना तैयार है लेकिन जिन्हें बुलाया गया था वे लायक नहीं थे, इसलिए सड़कों के चौराहों पर जिस किसी को पाते हो उसी शादी में न्योता दो। इसलिए वे नौकर सड़कों पर गए और जिस बुरे या अच्छे इंसान को पाया उसे ले आए। इस तरह से शादी का कमरा मेहमानों से भर गया। जब राजा मेहमानों से मिलने आया तो उसने एक ऐसे इंसान को वहां पाया जो दावत के कपड़े नहीं पहने था। उसने उससे कहा, दोस्त, तुम यहां बिना अच्छे कपड़े पहने कैसे आ गए? वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तब राजा ने नौकरों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर ले जाओ और अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सभी लोगों को नेवता तो दिया गया है, लेकिन सभी नेवते में आने की शर्त को मंजूर नहीं करते हैं।
तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उन्हें किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ यीशु के पास ये कहने को भेजा,
हे गुरु, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं?
यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा,
हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ।
तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। यीशु ने उन लोगों से पूछा,
ये मूर्ति और नाम किसका है?
उन्होंने कहा,
कैसर का।
यीशु ने कहा,
जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो।
यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उन्हें छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनके पास आए और उन्होंने यीशु से पूछा,
हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वो महिला भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
तुम बाइबल और परमेश्वर की ताकत नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है।
यह सुनकर लोग उनके उपदेश से अचंभित रह गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को जांचने के लिए उनसे पूछा,
हे गुरु, बाइबल में कौन सी आज्ञा बड़ी है?
उन्होंने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था, नियम शास्त्र और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है।
जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा,
मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वो किसकी संतान है?
उन्होंने उससे कहा,
दाऊद की।
यीशु ने उनसे पूछा,
तो दाऊद आत्मा के द्वारा उसे प्रभु क्यों कहता है? कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उन्हें प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे हुआ?
उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई।